हरे कृष्णा। तो आप सबको गीता जयंती महामहोत्सव की शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों ने बहुत ही उत्साह पूर्वक यज्ञ में भाग लिया। कितने भक्तों ने 700 श्लोकों का उच्चारण किया आज पूरा? यस, वेरी गुड, हरी बोल। तो हम धन्यवाद देते हैं परम पूजनीय भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी का, जिन्होंने अपना सानिध्य दिया और इस यज्ञ में महाराज बैठे। इतने वृद्ध अवस्था में होने के बाद भी महाराज पूरा 2 घंटे बैठे रहे और इस यज्ञ को करने की जो प्रेरणा हमें मिली वो मिली परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा। पहले ये यज्ञ केवल कुरुक्षेत्र में हुआ करता था, उत्तरी भारत में खासकर। तो महाराज ने आज से लगभग 5 या 6 वर्ष पूर्व हमें बोला कि आप भी यहाँ पे किया कीजिए। और जब जब महाराज इंडिया में होते थे, महाराज पूरा प्रयत्न करते थे यहाँ पे आने के लिए। कई यज्ञ में महाराज रहे भी साथ में। तो आज जोधपुर में मंदिर ओपनिंग है, इसलिए महाराज को वहाँ जाना पड़ा। लेकिन जिनसे भी महाराज मिलते हैं वो पंजाबी बाग मंदिर की बहुत तारीफ करते हैं कि आपको जाना चाहिए गीता जयंती के दिन वहाँ पे, कैसे सब लोग मिलकर वहाँ पे 700 श्लोकों का उच्चारण करते हैं और वहाँ यज्ञ होता है। तो उनके प्रोत्साहन से और प्रेरणा से हमें यज्ञ कर पा रहे हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। और एक गीता जयंती का उत्सव हम सबके लिए बहुत विशेष है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना के पूरे मानव समाज को ये भगवद गीता का संदेश दिया। और हमारा जो हरे कृष्णा आंदोलन है ये बिल्कुल भगवद गीता के आदेशों पर, शिक्षाओं पर आधारित है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया, प्रभुपाद लिख रहे हैं इसको भगवद गीता यथारूप। और इसके आमुख में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ओरिजिनल नेचुरल कॉन्शियसनेस ऑफ अ लिविंग एंटिटी। ये हमारी एक मूल चेतना है और स्वभाव है हमारा ये। और इसलिए इसी को कैसे हम रिवाइव करें, दोबारा पुनः जागृत करें, ये पूरे भगवद गीता का संदेश है। एक बार न्यूयॉर्क में प्रभुपाद थे तो वहाँ एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद से पूछा कि आप न्यूयॉर्क क्यों आए हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ये दिखाने के लिए कि भगवान एक जीवित व्यक्ति हैं और प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और हम भगवान के साथ रह सकते हैं। तो उस रिपोर्टर ने पूछा, तो भगवान कहाँ रहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े आश्वासन के साथ, बड़े निष्ठा के साथ कि भगवान रहते हैं भगवद गीता यथारूप में। बोले, क्या भगवान किताब के अंदर? तो प्रभुपाद ने फिर डबल कॉन्फिडेंस के साथ बोला यस। और इतना सुनना था उस रिपोर्टर ने भगवद गीता ले ली। तो वास्तव में भगवान में और भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके उनकी वाणी में, उनके नाम में, उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार से हम जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार से गीता जयंती, इस दिन भगवान ने गीता का संदेश दिया, गीता प्रकट हुई, ये तो हम सब कृष्ण भक्तों के लिए उतने ही धूमधाम से मनाने वाला महोत्सव है। और भगवान का अवतरण किस लिए हुआ था? गीता का संदेश देने के लिए। और जब गीता का संदेश दिया गया वो दिन कितना महान होगा। तो हमें आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से गीता के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। गीता का ग्रंथ बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है, जितनी बार भी इसको पढ़ें हमेशा नया लगता है, फ्रेश लगता है। और कहा जाता है जब कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में थे और उन्होंने अपने गुरु की सेवा की, तो सांदीपनि मुनि उनको ये आशीर्वाद दिया था कि जो वैदिक सत्य हमारे हृदय में हमेशा स्पष्ट रहे और आपके लिए ज्ञान हमेशा फ्रेश रहे। तो हम देखते हैं इसलिए भगवान की वाणी जो है हमेशा एवर फ्रेश, जितनी बारी हम पढ़ते हैं पहली बारी पढ़ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करना चाहेंगे, भगवद गीता हम जानते हैं सभी वैदिक शास्त्रों का सार है और इस कलयुग में हमारे पास समय नहीं है कि हम सारे वैदिक शास्त्र पढ़ सकें। 700 श्लोकों में पूरा का पूरा सार मिल जाता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे इन 700 श्लोकों का भी, पूरे भगवद गीता का सार क्या है। कोई आपसे पूछे एक शब्द में इस किताब का सार बताइए, तो क्या बताएंगे? कृष्ण भावना अमृत, गुड। और कृष्ण शरणागति, यस, माता ही पीछे, बहुत लंबे शब्द हो गए थे। और कोई? हाँ जी, सरेंडर, यस महाराज, वेरी निश्चित रूप से। हाँ, और कोई माता जी कह रहे थे पीछे? कृष्ण प्रेम, बिल्कुल ठीक बोला, पूरे भगवत गीता का सार है प्रेम। आपको लग रहा होगा ये क्या बात है, लड़ाई के युद्ध में, युद्ध के मैदान में और सार हो रहा है प्रेम, इस कैसे समझे, लेकिन हम देखेंगे वास्तव में इस पूरे गीता का सार है प्रेम। कैसे हम कृष्ण से प्रेम को उजागर कर सकते हैं, जैसे महाराज ने बोला शरणागति वो एक माध्यम है, कृष्ण भावना भावित होना वो एक माध्यम है, लेकिन पूरी गीता का सार प्रेम है। दिखने में सुनने में ये विडंबना लग सकती है, कुरुक्षेत्र का युद्ध जिसमें लाखों लाखों लोग की हत्या हुई और उसका सार, गीता का सार प्रेम, ये दिखने में विडंबना हो सकती है, लेकिन हम अगर ध्यान से प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ें, प्रभुपाद के प्रथम अध्याय से, प्रथम श्लोक के प्रारंभ से ही, इनफैक्ट इंट्रोडक्शन से ही, इनफैक्ट आमुख प्रीफेस से ही प्रभुपाद यही जोर दे रहे हैं कि हमें प्रेम चाहिए। अगर एक व्यक्ति कोई भी प्रभुपाद का एक गीता का एक पेज भी पढ़ लेगा, उसको मालूम चल जाएगा जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रभुपाद की विशेष कृपा है। तो कैसे ये गीता हमें प्रेम का संदेश देती है और कैसे हम भगवान के प्रति उन्मुख हो सकते हैं, इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, सीमित समय में इस पे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं इस संसार में हर व्यक्ति धनी बनना चाहता है और उसी को सफल व्यक्ति बोला जाता है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे धन का लाभ क्या होता है। तो ठीक है, धन की आवश्यकता है हमें कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन इसी को सफलता क्यों माना जाता है, धन से हमें क्या प्राप्त होता है? हाँ, धन से हमारे पास खरीदने की शक्ति आ जाती है, परचेजिंग पावर आ जाती है। उस परचेजिंग पावर से हम क्या खरीद सकते हैं? कुछ ऐसी चीजें जिसे हम सोचते हैं खरीद के हम खुश हो जाएंगे। तो वास्तव में हम अपने संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। और हम देखते हैं कि धन से हम जो कुछ सुविधाएं खरीदते भी हैं वो हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर पाता। लेकिन प्रेम एक ऐसा धन है जो भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको देने आए हैं। उस धन को प्राप्त करके हम कृष्ण को खरीद सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानति यावनश्चास्मि तत्वतः। कृष्ण षट ऐश्वर्य पूर्ण है और अगर हम कृष्ण से प्रेम करना प्रारंभ करें तो हम कृष्ण को जान पा सकते हैं। तो वास्तव में पूरे भक्ति, पूरे भगवत गीता का जो सार है वो भक्ति योग है कि कैसे हम भगवान को प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 18 अध्यायों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले 6 अध्याय कर्मयोग, दूसरे बीच के 6 अध्याय में भक्ति योग और अंतिम के 6 अध्यायों में ज्ञान योग। जिस प्रकार से अगर हम सैंडविच खाते हैं, ऊपर नीचे और ऊपर ब्रेड है और बीच में असली माल है, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण बात है? कोई बोलेगा ब्रेड। निश्चित रूप से जो बीच के अंदर जो पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ने कर्मयोग और ज्ञान योग के बीच में बीच के 6 अध्याय रखे हैं भक्ति योग। और योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना, यानी कि कर्म के माध्यम से भी हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भक्ति के प्रेम के माध्यम से भी और ज्ञान के माध्यम से भी। और भगवान ने पूरी गीता में क्रमशः इसका विस्तार किया है और इसको हम योगा लेटर कहते हैं। और हम किस स्थिति पे हैं उससे मालूम चलेगा कि हम किस प्रकार के योगी हैं। लेकिन भगवद गीता के ऊपर बहुत से लोग कमेंट्री देते हैं, वो कृष्ण को हटा देते हैं बीच में से। कृष्ण को हटा दिया तो योग को हटा दिया, क्योंकि योग का अर्थ है कृष्ण से अपने आप को जोड़ना। तो अगर कृष्ण को हटा दिया तो योग हट गया, तो क्या बचा? कर्म, ज्ञान और भक्ति। साधारण कर्म, ज्ञान और भक्ति अपने ही तरीके की। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं भगवद गीता सबके लिए है जी, जो कर्मनिष्ठ हैं, मेहनती लोग हैं, उनके लिए गीता कर्म का संदेश देती है, कर्म ही पूजा है। जो थोड़े फिलोसफिकल है, बहुत इन बुद्धिमान है, उनके लिए गीता ज्ञान का संदेश देती है। और जो बेचारे थोड़े भावुक लोग हैं वो भक्ति करते हैं। ये कितनी बड़ी गलत फहमी है, जबकि मुख्य सार है भक्ति। और जो बहुत मूल्यवान चीज होती है उसको संभाल के रखा जाता है, कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति को संभाल के रखा गया। तो देखते हैं ये संदेश कैसे भगवान अर्जुन को देते हैं। इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। दोनों सेनाएं तैयार हैं, शंख बज चुके हैं, और अर्जुन ने कृष्ण को कहा, सेनयो रुभयोर मध्ये रथम स्थापे में उच्यत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले जाओ और मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने आया है। भगवान मुस्कुराए क्योंकि भगवान जानते अब क्या होने वाला है। भगवान उनको ले गए और एकदम परफेक्ट स्पॉट पे खड़ा कर दिया। पश्चेतान पार्थ, देखो पार्थ देखो। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन को कहा देखो, भगवान ने अर्जुन को पूरी माया शक्ति से विमोहित कर दिया। अभी तक अर्जुन सोच रहे थे कि ये जो दूसरी तरफ से युद्ध लड़ने आए हैं इनसे मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, अपना अधिकार मांगूंगा। इस पूरी भावना के साथ, क्षत्रिय के स्वभाव के साथ अर्जुन युद्ध लड़ने आए। लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा देखो पार्थ देखो सामने कौन खड़ा है, तो अर्जुन का पूरा दृष्टिकोण बदल गया। आप अर्जुन को प्रतिद्वंदी दिखाई नहीं दे रहे थे, अर्जुन को दिखाई दे रहे थे अपने गुरु, अर्जुन को दिखाई दे रहे थे अपने पितामह, अर्जुन को दिखाई दे रहे थे अपने भाई, अपने पोते। कहा जाता है 7 पूरी पीढ़ियां थी, पूरी 7 जनरेशन, पर दादा थे, दादा थे, पिता थे, अपने सम्यक थे, पुत्र थे, पौत्र थे, पूरी की पूरी ऐसी पीढ़ियों को जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन घबरा गए। जिस गुरु से मैंने शस्त्र विद्या सीखी उनके विरुद्ध मैं शस्त्र कैसे चला सकता हूं? जिस पितामह ने मुझे अपने गोद में खिलाया, मेरी रक्षा की, उनको मैं कैसे उनके ऊपर तीर चला सकता हूं? और अर्जुन ने कहा क्या फायदा ऐसे युद्ध का, क्या फायदा ऐसे राज्य सिंहासन का जो उनके खून से नता हो, तो मैं सब छोड़ के जा रहा हूं। और अर्जुन रोने लगे, अर्जुन के हाथ से गांडी चला गया, सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, उसकी पूरी त्वचा जलने लगी, उसका मुख सूख गया। और गीता के पहले अध्याय के अंत में विसृज्य संशरण चापम शोक सभिंग न मानसा, एकदम शोक से होकर अर्जुन ने गांडी धनुष छोड़ दिया। और कोई साधारण व्यक्ति होगा तो समझेगा भी, देखो दो परिवारों में लड़ाई है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। एक खानदान ने दूसरे परिवार की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, वो वापस नहीं कर रहे। अब एक ही तरीका है तो कोर्ट लड़ाई झगड़ा कर लो, या एक भला मानस था अर्जुन बोला आप सब ले लो कोई बात, कितना अच्छा काम कर रहा है अर्जुन, हिंसा नहीं चाहता, आपको ये चाहिए ना ले लो, क्या क्या आया ले लो, चलो मैं जंगल में चला जाऊंगा मुझे क्या है। इतना नैतिकता के स्तर से देखा जाए अर्जुन ने कितना सुंदर कार्य कर रहे थे, लेकिन भगवान ने बोला नहीं ये तो बहुत गलत कार्य है। पूरी गीता भगवान ने अर्जुन को उत्तेजित करने के लिए बोली कि तुम लड़ाई लड़ो। और जब ये बात रशिया गवर्नमेंट को मालूम चली उन्होंने गीता बैन कर दी, ये तो टेररिज्म को एनकरेज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रही है। अर्जुन तो शांति की ओर भाग रहा था, वे कैसे भगवान है जो लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं? तो भगवान ने कहा नहीं लड़ना है तुम्हें। तो क्या बड़ा ही, अगर आप सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। एक व्यक्ति प्रॉपर्टी डिस्प्यूट छोड़ के शांति की ओर भाग रहा है और ये भगवान एक बोलते नहीं लड़ो। वास्तव में भगवान ने पूरा इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का उपयोग किया अर्जुन के माध्यम से हम सबके दृष्टिकोण को बहुत बड़ा करने के लिए। गीता का संदेश हमारे दृष्टिकोण को बड़ा करने के लिए है। जब अर्जुन ने गीता का संदेश सुना 18वें अध्याय में, जिसने पहले अध्याय में जो अर्जुन इतना महान क्षत्रिय होते हुए रो रहा था, कांप रहा था, गांडीव को छोड़ दिया था, जिस गांडी पे जिसको इतना गर्व था, कितनी बारी वो शपथ ले चुका था अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी गांडी की कसम खाता हूं मैं, उसको छोड़ दिया उसने। और गीता का संदेश सुनने के बाद उसने क्या बोला, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मैं उच्चते स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम त्वा, ये कृष्ण जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा। तो क्या ऐसा संदेश था, ऐसा अर्जुन जो थर थर कांप रहा था और अब शेर की तरह गरज रहा था कि जैसा कृष्ण आप कहोगे मैं कर लूंगा, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंट। पहले वो जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता, पहले अर्जुन पूरा कंफ्यूज था, अब पूरा दृढ़ था। पहले अर्जुन पूरा मोहित था, अब बिल्कुल क्लियर, नष्टो महा स्मृति लगता, पूरे संदेह खत्म हो गए। तो ऐसा क्या था कि भगवान ने ऐसा क्या उसको संदेश दिया कि अर्जुन में इतनी दृढ़ता आ गई? हम सब भी अपने जीवन में देख सकते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि जो गांडीव धनुष है ये उसका प्रतीक है अर्जुन की दृढ़ता का, या हमारी दृढ़ता का प्रतीक है, डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, दृढ़ता के हम हर परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थितियों में सही कार्य करेंगे। और जब अर्जुन के लिए इतनी विषम परिस्थितियां आई, अर्जुन की डिटर्मिनेशन कमजोर पड़ गई और उस गांडीव रूपी दृढ़ता को उसने त्याग दिया। लेकिन जब गीता का संदेश सुना तो उसके अंदर दोबारा से वो दृढ़ता आ गई कि अब मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मैं विषम कार्य करूं। तो इसलिए गीता का संदेश क्या था जो अर्जुन के हृदय में इतना बड़ा बदलाव आया? तो भगवान ने अर्जुन को कहा, संदेश तो क्या दिया, गीता का सार क्या है? प्रेम। तो प्रेम का ऐसा संदेश दिया, कोई कह सकता है अर्जुन प्रेम ही तो कर रहा था, अपने भाइयों से, अपने गुरुजन से, अपने पितामह से वो प्रेम ही तो कर रहा था। लेकिन भगवान ने कहा, प्रेम कर रहे हो लेकिन ये अपूर्ण प्रेम है, तुम जानते नहीं तुम्हें किससे प्रेम करना है। तुम किससे प्रेम कर रहे हो? केवल उनके कपड़ों से। तुम्हारा प्रेम अपूर्ण है, तुम वास्तविक उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे, उसके ऊपरी आवरण से प्रेम कर रहे हो। और जब तक तुम ऊपरी आवरण से ही आसक्त रहोगे, हमेशा दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान, प्रेम करना है लेकिन किससे करना है ये मालूम होना चाहिए, आसक्त होना है लेकिन किससे आसक्त होना है ये मालूम होना चाहिए। तो अर्जुन को पूरा दृष्टिकोण भगवान ने बड़ा किया, ना तो हम जातु ना सम ना तम न मेज ना दीपा। ऐसा नहीं है अर्जुन कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, तुम अभी हो, रहोगे और थे, हैं और रहोगे। अर्जुन का दृष्टिकोण बहुत बड़ा हुआ और बताया कि जो हत्या हो रही है इनके शरीर की हो रही है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के खत्म होने पर भी कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और अर्जुन ये समझ पाया जो मेरे प्रेम करने की प्रवृत्ति है वो इस आत्मा के स्तर से उदित हो रही है। और क्योंकि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, ये एक अस्थाई चीजों को प्रेम करके संतुष्ट नहीं हो सकती। गीता की सबसे पहली शिक्षा जिसको थोड़ा जानने मात्र से ही हर प्रकार के शोक से मुक्त हो सकते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं और इस शरीर का तो क्षय होना ही होना है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौम आरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति र धीरस तत्र नमोयति। लेकिन अर्जुन ने पूछा, ये तो आपने बात सही कह दी, मैं आत्मा हूं और देह तो त्यागना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में मुझे पितामह ने इतना प्रेम दिया, द्रोणाचार्य ने मुझे ऐसी शिक्षा दी, ये सब मेरे भाई हैं, इनके साथ में खेला कूदा, मेरा कुछ तो स्नेह होगा इनके प्रति, और जब ये शरीर नहीं रहेगा दुख तो होगा, उसका क्या करूं? फिर भगवान ने क्या बोला, मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये तो दुख होगा, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा। अक्सर लोग गीता का संदेश समझ के कहते हैं कि हृदय कठोर कर लो, नहीं, जिनके साथ आप रहे जो हमारे निकट के संबंधी हैं वो शरीर छोड़ेंगे, दुख तो होगा ही, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगा पमनार आपान नित्य तांस्तितिक्षस्व भारत। हमारे पास और कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है, केवल उसको हम सहन करें, जैसे गर्मी को सहन करते हैं, सर्दी को सहन करते हैं, वैसे इसको सहन करें। भगवान आगे जाके बताएंगे, अर्जुन असली दुख ये नहीं है कि कोई शरीर त्याग रहा है, असली दुख तो ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। आत्मा के लिए बहुत बड़ी सजा है शरीर को ग्रहण करना। आत्मा सच्चिद आनंद है, आत्मा हमेशा युवा है, और आत्मा को वृद्ध होना, तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होना, और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर से जन्म लेना, असली दुख तो ये है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इसका दर्शन करना चाहिए दुख के रूप में। होता क्या है कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि को तो पार्ट ऑफ लाइफ ले लेते हैं और अपने छोटे छोटे जो परेशानियां आती हैं उसको सॉल्व करने में पूरा जीवन बिता देते हैं। गीता का संदेश यह है कि छोटी छोटी तकलीफें आनी है इसको तो सहन करो, लेकिन अपनी पूरी शक्ति पूरी समय का उपयोग करो जो हमारे मुख्य दुख हैं उनको दूर करने के लिए। कितना महत्वपूर्ण संदेश है भगवत गीता का। आज इस संसार में आप जाएंगे किसी से पूछेंगे कि हमारे वास्तविक दुख क्या हैं, तो हर व्यक्ति अपने दुखों की लड़ी लगा देगा। मेरी बहू मेरा कहना नहीं मानती, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, जहाँ हाथ डालू पैसे ठप हो जाते हैं, मशीन ठप हो जाती है, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरे को यश नहीं मिल रहा, पद नहीं मिल रहा, मेरा स्वास्थ्य खराब है, सब यही तरह के दुख बताते रहेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं असली दुख आत्मा के स्तर पे क्या दुख है। अगर हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो जो शरीर को तकलीफ हो रही है वो हमें दुख कह रहे हैं, उसको हम दुख समझेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तो आत्मा होते हुए आत्मा अजर अमर है, तो इसका जन्म क्यों, इसका मृत्यु क्यों, और बीच में बुढ़ापा और बीमारी क्यों? हम डिजर्व नहीं करते इसको, ये हम इसके लायक नहीं है। केवल कुछ गलत फहमियों के कारण बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कितनी बारी सृष्टि की प्रलय हो गई हमारे सामने, कितने ब्रह्मा आए चले गए, कितने इंद्र चंद्र वरुण आए चले गए, सारी की सारी गवर्नमेंट बदल गई, लेकिन हम वहीं के वहीं, क्योंकि बात समझ में नहीं आई कि मैं कौन और मुझे कहां से प्रेम मिलेगा। प्रेम की प्यास तो बुझानी ही है, और प्रेम की प्रयास बुझाने के लिए हम शरीर के स्तर पे प्रयास कर रहे हैं तो ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ये दिया, अर्जुन तुम प्रेम करना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन प्रेम पहले तो ये तो जानो कि तुम हो कौन। हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है, उसने बहुत सुंदर वेशभूषा डाल रखी है, कपड़े डाल रखे हैं, वो हमारे पास आया और उसके उसके कपड़ों का हमने गुणगान करना शुरू कर दिया, क्या थ्री पीस सूट है प्रभु, वाह कमाल कर दिया, माता जी बोल रहे क्या साड़ी है, सुनने शुरू शुरू में तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन उस व्यक्ति से पूछा ही नहीं क्या खाओगे क्या पियोगे, थोड़ा बैठो आराम करो, कब तक अच्छा लगेगा अपने कपड़ों की तारीफ, हम भूखे हैं प्यासे हैं थके हुए हैं, ना खाने को दे रहे हैं ना कुछ पीने को ना बैठने को बोल रहे हैं, संतुष्ट हो सकते हैं? नहीं। तो यही हम करते हैं, शरीर को केवल चाहते हैं, जानते नहीं कि शरीर के अंदर क्या है। तो इस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबका दृष्टिकोण बड़ा भी नहीं किया, गहरा भी किया कि शरीर के अंदर क्या है, एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है, आप हैं असली, आपका असली स्वरूप, आप जीवात्मा है, और कैसे आप इस संसार से आदान प्रदान कर रहे हैं इसको समझाया भगवान ने अर्जुन को। कितना आप देखिए इससे महत्वपूर्ण ज्ञान और कहां मिल सकता है। तो पहला संदेश तो अर्जुन को बताया कि तुम आत्मा हो और तुम सनातन हो, और तुम्हें जो प्रेम भी चाहिए वो सनातन चाहिए होगा, तो जो तुम्हारे प्रेम का विषय है उसको भी सनातन होना पड़ेगा। और फिर भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं सब कारणों का कारण हूं, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धा भाव समन्विता, कि सारे के सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगत मुझसे ही निकले हैं, मुझसे ऊपर और कोई सत्य नहीं है, मता परातरम मना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, परम सत्य मैं ही हूं, मेरी शरणागत हो, और मैं तुम्हारे साथ अवतरित तो हुआ हूं, तुम्हारा समकालीन हूं, लेकिन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योतिर्मेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति स अर्जुना। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो केवल मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता को ही जानने का प्रयास करेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर प्रारंभ होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को बताया। कोई कह सकता है भगवान तो अर्जुन के सामने बैठे थे, उनके रथ के चालक थे, हमारे साथ कहाँ है, हम किससे प्रेम करें? लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं सबके हृदय में हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च, जो भी आपको स्मरण होता है, जो कि आपको भूलना चाहते हैं वो सबका सब मैं प्रदान करता हूँ। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को जो प्रेरणा मिलती है आविष्कार करने की सारी प्रेरणा भगवान देते हैं। भगवान कितने कृपालु हैं। गीता के माध्यम से कृष्ण ने भगवान को लेकर जो मिसकंसेप्ट होते हैं उसको दूर किया। कई लोग बोलते हैं भगवान है नहीं पता नहीं। हाँ, एक शक्ति को मानना चाहिए जिसके भय से हम कोई पाप नहीं करेंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे हम कुछ गलती करेंगे हमें सजा दे देगा। नहीं, कृष्ण ने बताया मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सबसे बहुत प्रेम करता हूं। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमसे इतना प्रेम करता हो जितना कि कृष्ण हमसे करते हैं। ध्रुव महाराज के प्रसंग में तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, अगर इस पूरी सृष्टि की जितनी भी माताएं हैं जो अपनी संतान से प्रेम करती हैं, उनके प्रेम को एक जगह लिया जाए और कृष्ण के हृदय में प्रत्येक जीव के लिए जो प्रेम है उसको एक जगह लिया जाए, तो सभी माताओं का, सृष्टि के माताओं का प्रेम कृष्ण के प्रेम की तुलना के समान, तुलना में एक बूंद के समान भी नहीं है। कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं तुम किसी चीज की चिंता मत करो, मैं हूं। अनश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्योभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। हमारा पूरा जीवन चिंताओं में निकल जाता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है, ये कोई मुझसे छीन ना ले। भगवान कहते हैं जो चाहिए वो दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम क्या करो, मेरा चिंतन करो अनन्य भाव से, भूल जाओ सभी देवी देवताओं को, सबको सब जो भी आपको देते हैं मेरे द्वारा ही प्रदत्त होता है, डायरेक्टली मेरे पास आओ और किसी का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा वो तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। इतना बड़ा आश्वासन कौन दे सकता है। तो भगवान ने अपना परिचय दिया और फिर भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि आत्मा और उनका क्या संबंध है। कृष्ण ने कहा ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनाषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये सारी की सारी जीवात्माएं मेरे अंश हैं अर्जुन, मेरे अंश, और जो ये अंश हैं अंशी की सेवा करके ही संतुष्ट हो सकते हैं। अंश अगर अंशी से अपने आप को अलग करेगा तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। अगर हाथ में गुलाब जामुन आया है तो हाथ का कर्तव्य है उसको मुख में डालना, वो पेट में जाएगा, मुख चबाएगा, उसका रस बनेगा, पेट में जाएगा, पचेगा और पूरे शरीर में शक्ति का संचार होगा। हितोपनिषद में कथा आती है सारे के सारे शरीर की इंद्रियों ने स्ट्राइक कर दी, मेहनत हम करें और आनंद ले पेट, ये सुस्त पड़ा रहता है यहाँ पे, कुछ करता धरता है नहीं और सारा काम हम करते हैं। हाथ में गुलाब जामुन आया, गुलाब जामुन ने बोला हड़ताल, नहीं डालूंगा मुंह में और मैं खुद इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर इसको भोगूंगा, गरम गरम रस गुलाब जामुन, सर्दियों का महीना, और उसको रस निकालने का प्रयास कर रहा है, निकाल लूं इसमें से जितना रस, तो क्या होगा, मिलेगा उसको कुछ रस, कुछ नहीं। क्या करे, अगर वो कॉपरेट करेगा उधर के साथ, इसको उधर में डालेगा तो कितनी शक्ति का संचार हो। छोटी सी बात है लेकिन हमें समझ में नहीं आती। और भगवत गीता के प्रीफेस में, आमुख में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सारे के सारे कार्य हमें अपनी, हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए करते हैं, इसलिए सारा संसार दुखी है। क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करना है। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा वॉन्ट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट, कृष्ण चाहते हैं और कृष्ण इसकी उपेक्षा करते हैं। देखिए कृष्णा कितने कृपालु हैं, डिमांड करते हैं भाई ऐसा मत करो मुझे चाहिए। यत करोषि यद अश्नासी यद जुजोसी तदासी यद यत तपस्वसी कौंतेय तत् कुरुषु मद अर्पणा, मेरे को अर्पण करो, स्वतंत्र होकर मत करो। ये संदेश है। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तो कर्मणि। भगवान ने कह दिया अपना कर्म करो, बस यही गीता का सार है, कर्म ही पूजा है, अपनी ड्यूटी करते रहो। ये बिल्कुल अपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है, पूर्ण अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं है भगवत गीता की। निश्चित रूप से भगवान ने कहा है हम अपनी ड्यूटी करें, और भगवान ने बताया है कि ड्यूटी दो तरह की है। हमारा अस्तित्व डबल साइडेड है, हमारे अस्तित्व के दो भाग हैं, एक शरीर और दूसरा आत्मा। तो जब तक हम इस शरीर देह में हैं तो हमें इस देह का भी ध्यान रखना है। कई बार भक्त लोग प्रारंभिक अवस्था में इतना सब सुनते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, तो थोड़ा भी शरीर का ख्याल रखना, बोले नहीं नहीं देहात्म बुद्धि हो जाएगी, वो थोड़ा इतना फैनेटिक हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं देह नहीं हूं, लेकिन अभी मैं देह के अंदर तो हूं, देह के अंदर हूं, तो इस देह का ध्यान भी रखना है। और इस देह के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, परिवार है, समाज है, उसको भी हमारे प्रति जो कर्तव्य है उसको भी पूरा करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि कुछ हमारे कर्तव्य हैं शरीर के स्तर पे, उसको भी पूरा करना है। जैसे आप में से अधिकांशतः लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम के अलग कर्तव्य हैं, संन्यास आश्रम के अलग कर्तव्य हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम के अलग कर्तव्य हैं, तो उसको हमें पूरा करना है। लेकिन जो आत्मा की ड्यूटी है, आत्मा का कर्तव्य है, वो सबके लिए एक है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवत गीता का इतना अचूक ज्ञान है, इतना सुंदर मिश्रण है कि भगवान हमें यह संदेश दे रहे हैं, अपने आत्मा का कर्तव्य करते हुए शरीर का भी कर्तव्य का पालन इस ढंग से करें कि शरीर के कर्तव्य के पालन में हम जो कार्य करते हैं वो आत्मा के कर्तव्य के पालन में सहयोग दे। आप समझे? इस प्रकार से हमारा ऑक्यूपेशन होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए, कि हम कभी भी ये ना भूलें कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए अध्ययन करें कि हमने कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। हम बिजनेसमैन हैं तो इसलिए बिजनेस करें कि हमने कृष्ण से प्रेम करना है। हम गृहिणी हैं तो घर के कार्य इस ढंग से करें कि हमें कृष्ण से प्रेम करना है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच। इतना परफेक्ट ज्ञान, देखिए भगवान कैसे सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम सारे कार्य मुझे समर्पित करते हुए करोगे तभी संतुष्ट रहोगे। तुम्हें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तुम्हें जो आनंद मिलेगा, वो आत्मा के स्तर पर ही तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। और आत्मा संतुष्ट होगी जब वो कृष्ण की सेवा करेंगे। आत्मा को अगर आप शरीर के स्तर के कुछ आनंद देने के प्रयास करोगे, हम लोग शरीर के जो पांच इंद्रियां हैं उनको, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लाते हैं तो कुछ एक्साइटमेंट होता है। वो एक्साइटमेंट केवल समझ लीजिए दो केमिकल्स को मिलाने के समान है। ये शरीर तो केमिकल ही है, दो शरीर आपस में मिलेंगे, केमिकल्स, कुछ रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन से कुछ एक्साइटमेंट होगी ना। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हवा निकलेगी, कुछ आग बनेगी, और हो सकता है टेस्ट ट्यूब फट भी जाए तो ये कुछ रिएक्शन होगा। इसी ढंग से गरम गरम समोसा आपने जीवा पे रखा, कुछ आनंद आएगा। त्वचा से किसी को छुआ, कुछ आनंद की अनुभूति होगी। किसी ने हमारी कोई प्रशंसा की, कुछ गुदगुदी होगी। बस आत्मा को वो टच भी नहीं कर पाएगी, आत्मा वैसे ही असंतुष्ट की असंतुष्ट ही रहेगी। और अज्ञानता के कारण पूरा का पूरा विश्व इस प्रकार के छोटे छोटे एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहा है। पूरे आजकल की जो आधुनिक समाज की प्रगति है उसका मापदंड यही है, कितनी सुविधाएं हैं हमारे पास अपने आप को टिटिलेट करने के लिए, एक्साइटमेंट लाने के लिए। ये तो प्रगति के लक्षण नहीं है। प्रगति अक्सर ये वास्तव में है कि क्या कितना हम जानते हैं किस तरह से हम आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवते आदि अंतवंत कुंते हा ना तेषु रमते बुद्धा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे सुखों में नहीं फंसता, बुद्धू व्यक्ति फंस जाएगा। तो विकल्प हमारे पास है कि बुद्धू बनना है कि बुद्धिमान बनना है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर अपने विषय में ज्ञान दिया, भगवत तत्व के बारे में बताया, और फिर बताया कि अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी मेरी सेवा नहीं करते, ऐसा क्यों? सब कुछ जानते, अर्जुन ने यही पूछा कि मैं तो सब कुछ जानता हूं फिर भी गलत कार्य कर बैठता हूं। तो भगवान ने क्या बताया? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये रजोगुण से उत्पन्न है। यानी कि जब शुद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो प्रकृति के तीन गुणों से बन जाती है। प्रकृति के तीन गुणों में बन कर आत्मा ऐसे ऐसे कार्य करता है जो जिसको हम तमोगुण और रजोगुण के अंदर हम क्रोधी हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं, द्वेषी हो जाते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं और हिंसा कर सकते हैं, और जिसके लिए हमें बाद में बहुत पछताना पड़ता है, और फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें फंसाता रहता है। ये प्रकृति के तीन गुण हमें बांध देते हैं। प्रकृति क्रिय माणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। और व्यक्ति सोचता है कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति के तीन गुणों से वो बंधा हुआ है। तो भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अगर कोई समझ जाए किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण मुझ पर प्रभाव डाल रहे हैं, केवल इस ज्ञान को प्राप्त करने मात्र से ही वो अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो इसलिए अपने स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। जब भगवद गीता का 14 अध्याय और 17वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों के लक्षण पढ़ेंगे तो हम अपनी प्रकृति को पहचान सकते हैं, मेरे अंदर कितना सतोगुण है, कितना रजोगुण है, कितना तमोगुण है, और तमोगुण का क्या प्रभाव होगा, रजोगुण का क्या प्रभाव होगा, सतोगुण का क्या प्रभाव होगा। रजोगुण के अंदर मेरे अंदर बहुत सी इच्छाएं होंगी, बहुत सी कॉम्पिटेटिव मेंटेलिटी होगी, और अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, इच्छाएं पूरी हो गई तो लोभ आएगा, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो तमोगुण में चला जाऊंगा, तमोगुण में बिल्कुल निराश हो जाऊंगा, डिप्रेस हो जाऊंगा, गुस्सा करूंगा, द्वेष करूंगा। देख सकते हैं हम कहां पे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए अपने जीवन में? सतोगुण को विकसित करना चाहिए, लेकिन सतोगुण में आके भी स्थिर नहीं हो जाना चाहिए। इसके बाद भगवान बता रहे हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा नेस्त्र गुणे भव अर्जुना, तुम्हें इन तीनों गुणों से बाहर जाना है, क्योंकि आत्मा वास्तव में इन तीन गुणों से परे। तो भगवान तीसरा विषय प्रकृति के विषय में चर्चा करते हैं। भौतिक प्रकृति कैसे है सनातन, लेकिन भौतिक प्रकृति से जो विश्व की रचना होती है, सृष्टि की रचना होती है, ये बार बार प्रलय इसमें आता है और दोबारा से इसका सृजन होता है। और फिर भगवान बताते हैं, सब जीव प्रकृति के तीन गुणों और काल के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, और काल भगवान की एक शक्ति है जो सब कुछ धीरे धीरे निकल रहा है। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप के माध्यम से अर्जुन को दिखा दिया किस प्रकार से उन्होंने सब योद्धाओं को पहले से ही मार के रखा है। काल की शक्ति का हमें अनुभव होना चाहिए, और भगवान कह रहे हैं कि इसलिए समय का बहुत सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अनान्य कामिना, हमें इस ढंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एक क्षण भी हमारा व्यर्थ ना जाए। और तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मरण युद्ध च, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय से आ सकती है। अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर पाए तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएंगे। तो इसलिए काल की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता। हम सब अपने चेहरों को जब शीशे में देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। जब व्यक्ति युवा होता है तो उसको मालूम नहीं चलता कि वो वृद्ध हो रहा है, लेकिन जब 30 के बाद देखेंगे कितने तेजी से उसके शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज भी कहते हैं, एन ओल्ड मैन गेट्स ओल्डर फास्टर, फिर तो समय बहुत तेजी से निकलता है और इतनी तेजी से परिवर्तन आते हैं शरीर के अंदर, और बहुत मुश्किल है, उसको हम रोक नहीं सकते। इसलिए जो भी समय हमें इस मनुष्य जीवन में मिला है, इसका बहुत सोच समझ कर और जिम्मेवारी के साथ हमें इसका सदुपयोग करना है। और फिर भगवान ने कर्म के विषय में बताया कि किस प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। यज्ञार्थ कर्मणों अन्यत्र लोकायाम कर्म बंधना, सारे के सारे कर्म हमें इस प्रकार से करने चाहिए कि वो यज्ञ बन जाए। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को मानकर युद्ध लड़ा और ये युद्ध उसका भक्ति बन गया। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भगवान भक्ति की परिभाषा देते हैं, शुद्ध क्रियाएं, प्यूरिफाइड एक्टिविटीज। तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस हमारा भक्ति बन सकता है, अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान के आदेश के अनुसार चलें। ये कैसे करें, इसके लिए भगवान ने कहा इसको सीखने के लिए प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएं। प्रमाणिक गुरु हमें ऐसी शिक्षा देगा कि कैसे हम इस संसार की हर वस्तु को दिव्य बना सकते हैं कृष्ण की सेवा में लगाकर। और इस प्रकार से हम देखते हैं जब अर्जुन ने भगवान की आज्ञा में युद्ध लिया लड़ा तो भागवत हमके तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि अर्जुन जब विरोधी पार्टी पे तीर छोड़ रहे थे, उन तीरों में इतनी शक्ति थी, जब उस तीर विरोधी पार्टी के योद्धाओं को लगते थे तो सारे के सारे उनके पाप हर लेते थे, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते थे। और जब वो शुद्ध होते थे और फिर सामने रथ पे कौन बैठे हैं, कृष्ण, कृष्ण का दर्शन करते हुए शरीर छोड़ते थे, सीधा वैकुंठ धाम गए। यानी कि भक्ति हमको भी पवित्र करती है और दूसरों को भी पवित्र करती है। उन योद्धाओं का तो कोई क्रेडिट नहीं था, लेकिन क्या अर्जुन की भक्ति का प्रभाव था, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार से शीला प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया। प्रभुपाद की वाणी में इतनी शक्ति थी, जिसने जो प्रभुपाद के संपर्क में आया वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो इसलिए हम देख सकते हैं भगवद गीता का यह संदेश प्रेम का संदेश है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कैसे प्रेम करना है। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी कि कैसे जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में गए, दक्षिण भारत में उनको ब्राह्मण मिला जो कि अनपढ़ था और गीता पढ़ते पढ़ते रो रहा था, और उसके आसपास बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण खड़े थे जो उसका परिहास कर रहे थे। तो भगवद गीता में ऐसे बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे जिनको 700 के 700 श्लोक याद हैं, जो बड़ी बड़ी कमेंट्री दे सकते हैं, लेकिन असली जो बात है वो है कि कितना हमने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित किया। तो वो जो ब्राह्मण बेचारा अनपढ़ था वो पढ़ते पढ़ते रो रहा था और बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इसको तो संस्कृत बोलने में नहीं आती, तो महाप्रभु जो कि सब अंतर्यामी जानते हैं फिर भी उन्होंने लीला करते हुए उस ब्राह्मण से पूछा, ये ब्राह्मण तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो क्यों पढ़ रहे हो? तो क्या बोला उन्होंने, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ूं। ठीक है, वो तो आप पढ़ रहे हो लेकिन रो क्यों रहे हो? तुम्हारे आंखों से अश्रु धारा बह रही है निरंतर, तुम्हारे शरीर के बाल खड़े हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, ये लक्षण क्यों? उन्होंने बोला, जब मैं गीता के बारे में स्मरण भी करता हूँ तो मुझे वो दृश्य याद आता है किस प्रकार से वो त्रिलोकीनाथ कृष्ण अपने भक्त के लिए एक ड्राइवर बन गए। ये सोचते ही मेरे शरीर में कंपन आ जाते हैं। और जब ये महाप्रभु ने सुना उन्होंने बोला, तुम वास्तव में गीता के संदेश को समझे हो। तो भक्ति के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से ही हम कृष्ण को जान सकते हैं। जब भगवान अप्रकट हो गए तो अर्जुन कृष्ण को क्या समाचार लेने के लिए द्वारका में गए, और 7 महीने बीत गए अर्जुन वापस नहीं आया, और युधिष्ठिर को बहुत चिंता हो रही थी, और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में बहुत उल्टे सीधे लक्षण दिखाई दे रहे थे, और सारे लक्षण ये बता रहे थे कि कृष्ण अब अप्रकट हो गए होंगे। और 7 महीने के बाद जब अर्जुन वापस आए तो अर्जुन की शरीर की कांति बिल्कुल जा चुकी थी, अर्जुन बहुत ही मायूस था, और युधिष्ठिर ने उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे कि तुम इतने मायूस क्यों हो, क्या तुमसे क्या क्या गलतियां हो गई, लेकिन अर्जुन चुपचाप रोते रहे। और अंत में युधिष्ठिर ने पूछा, क्या कृष्ण चले गए? और उसके बाद अर्जुन फूट फूट के रोए, और अर्जुन ने बताया, हाँ कृष्ण धाम छोड़ के चले गए हैं। और फिर अर्जुन ने बताया, जब वो कृष्ण की रानियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वापिस लेकर आ रहे थे तो रास्ते में कुछ ग्वाले उनको मिले, उन्होंने उनसे युद्ध किया, और अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन उस युद्ध में हार गया, और अर्जुन को बहुत विस्मय हो रहा था, वही रथ, वही अर्जुन, वही गांडेव, और इन ग्वालों के सामने में हार गया। अर्जुन ये बात समझ नहीं पा रहा था और बहुत रो रहा था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कृष्ण ने सारी की सारी शक्तियां उसकी छीन ली है। लेकिन फिर अर्जुन ने याद किया, अर्जुन ने याद किया कृष्ण ने मेरे ऊपर क्या क्या मेरे पर फेवर्स किए हैं, मुझ पर कृपा की है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की। तो अर्जुन ने याद किया कि कृष्ण ने मेरे पर कैसी कैसी कृपा की, कैसे द्रौपदी के स्वयंवर में उन्होंने मेरी सहायता की, कैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बड़े बड़े जो अनुभवी योद्धा थे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से उनसे मेरी रक्षा की, और फिर उसने याद किया कैसे कृष्ण के साथ उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ समय बिताया, और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण याद की कि कृष्ण ने मुझे क्या आदेश दिए थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। और जब अर्जुन ने उसका स्मरण किया, अर्जुन का सारा शोक दूर हो गया। तो गीता के भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 30वें श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, गीतम भगवता ज्ञानम यत यत संग्राम मूर्धनि काल कर्म तो रुद्धम पुनरध्य मगत प्रभु। भगवान के लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गए हों, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं थी, वह पुनः अपने इंद्रियों को स्वामी बन गए। तो गीता के यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम भगवान के आदेशों का स्मरण करेंगे तो हर प्रकार के चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं। हमने अपने जीवन में भी देखा होगा आप सबने कि जब आप वास्तव में परेशान हैं और आप भगवत गीता खोलते हैं, कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसका समाधान आपको तत्पर में मिल जाता है ना। कई भक्तों ने ऐसा अपना अनुभूति शेयर की है। सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं, देश कालार्थ युक्तानि हित उपशमानि च हरन्ति स्मरस चित्तम गोविंद अभितानि में। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। भगवान के आदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। अगर हम प्रतिदिन भगवद गीता का अध्ययन करें और उनके कुछ श्लोकों पर मनन करें तो निश्चित रूप से हम कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित नहीं होंगे और इस संसार की बड़ी से बड़ी समस्या का हम सामना करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो अपने ही शोक में हम डूबे रहते हैं, और शोक में डूबने से हम भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं कर पाते। अक्सर लोग हम समझते हैं कि मैं शोक में डूबा रहूंगा, अपने आप पे दया करूंगा तो शायद भगवान मुझ पे दया कर ले। नहीं, भगवान दया तब करेंगे जब हम देखेंगे भगवान की नाम की हम शरण ले रहे हैं, भगवान के उपदेशों की हम शरण ले रहे हैं। तो समय हो रहा है, मैं ज्यादा कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समराइज करते हैं कि भगवद गीता का सार है कैसे हम कृष्ण से प्रेम करें। और ये समझाने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को 5 विषयों के बारे में बताया। सबसे पहले ये बताया, अर्जुन तुम जीवात्मा हो, सनातन हो, और तुम केवल सनातन वस्तु से प्रेम करके ही संतुष्ट रह सकते हो। इस संसार की अस्थाई नश्वर वस्तुओं से प्रेम करके कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। और वो सनातन व्यक्ति कौन है? वो स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि जीवात्मा कृष्ण का अंश है। इसलिए हमारे हर कार्य, हर शक्ति कृष्ण के लिए होनी चाहिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, और प्रकृति के 3 गुणों में प्रभाव में आके हम अपना स्वभाव भूल जाते हैं, अपना असली स्वभाव। और जो हमें 3 गुणों से द्वारा प्राप्त स्वभाव है उसको अपनी असली पहचान मानते हैं। लेकिन अगर हम निरंतर भक्ति योग में लगे रहेंगे तो हम 3 गुणों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। प्रकृति के 3 गुणों और काल के प्रभाव में हम कर्म करते हैं, और अगर वो कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो हमारे बंधन का कारण बनता रहेगा। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें। अक्सर लोग जो ग्रस्त आश्रम में पूछते हैं कि प्रभु जी, जब हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कैसे कृष्ण का स्मरण करें? हमारे वहां पे इतना टेंशन है, GST चल रहा है आजकल, स्टेटमेंट भेजनी है, और कहां हम कृष्ण का स्मरण करें? इतना प्रेशर है हमारे ऊपर, हम भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम कृष्ण के भक्त भी हैं, हमारे नाम का जप भी करते हैं। तो क्या किया जाए कि कार्य क्षेत्र में भी हम कृष्ण का स्मरण करें? तो उसका तर ये है, पहले ये निश्चित करें कि जब हम कार्य क्षेत्र में नहीं हैं, क्या हम तब कृष्ण का चिंतन करते हैं? तो देखिए, तब भी हम सही ढंग से नहीं करते। अगर जब हम कार्य क्षेत्र में नहीं गए तब अच्छे ढंग से जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमें मदद करेगा कि कार्य क्षेत्र में भी हम कृष्णा भावना भावित रहेंगे। इसलिए हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि शिला प्रभुपाद जी की हमें शरण प्राप्त है। और अंत में हम कैसे इस प्रेम को विकसित कर सकते हैं, इसके लिए पूरा समराइज हम करते हैं। आप सबने पहले जानते भी होंगे, लेकिन गीता जयंती के महोत्सव पर दोबारा से इसको रिवाइज कर देते हैं। ये है ABCDE, ये 5 चीजें हैं। ए का क्या होता है सब जानते हैं, ए फॉर भक्तों का संग, भगवान गीता में बताते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम। भक्तों के संग में आके क्या करना है, नरेंद्र मोदी की चर्चा नहीं करनी, वो कुछ पर्सनैलिटी है, लेकिन हमें चर्चा करनी है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण की चर्चा। और मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंत शमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। बी फॉर बुक रीडिंग, कौन सी बुक पढ़ेंगे, भगवद गीता और भागवतम। भगवान गीता में बता रहे हैं 17वें श्लोक में 18वें अध्याय के, जो भगवत गीता का अध्ययन करता है वो मेरी पूजा करता है, किससे, बुद्धि से। तो गीता का अध्ययन हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जब भी परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज आते हैं वो सबसे हाथ खड़ा करवाते हैं, कौन कौन प्रतिदिन गीता पढ़ता है, और सबसे संकल्प भी लेते हैं। हम इतने डीठ हैं, हाथ भी खड़ा कर देते हैं कई बार, लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो आज गीता जयंती के दिन हम ये संकल्प लें कि हम गीता प्रतिदिन अवश्य पढ़ेंगे। कितने भक्त लोग ये संकल्प लेते हैं, कोई बात नहीं, शक्ति मांगेंगे बलराम जी से, है ना, बलराम जी शक्ति प्रदान करेंगे, बल देंगे कि हम इस संकल्प को पूरा कर पाए। क्योंकि भगवान का अवतरण ही इसलिए हुआ कि वो गीता का संदेश दें, और गीता के संदेश और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हम बड़े ध्यान से गीता के संदेश को पढ़ेंगे हमेशा भगवान का सानिध्य में रहेंगे। बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्तों के संग और बुक रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। और डी फॉर डाइट, प्रसाद, इस जीवा पे केवल वही रखेंगे जिसको भगवान को अर्पित हो। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रेच्छति। तो कैसी परिस्थिति हो हमेशा हम प्रसाद का सेवन करें। अगर हम ए बी सी डी करेंगे तो ई से क्या होगा, एक्सटेसी, तो हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग चाहते हैं एक्सटेसी कृष्ण के प्रेम के, अरे वो क्या करना है, बस ए बी सी डी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन, पूरे ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, केवल प्रसाद का सेवन करना। प्रभुपाद जी ने इतना सिंपल बना दिया है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा, सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। गीता जयंती के उत्सव पे हम यही प्रार्थना करें कि गीता के संदेश के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हो और हम इसको गहराई से समझ सकें। और अब हमारे बीच बहुत ही विशेष वक्ता, आप लोग बैठे रहिए, है ना, द बेस्ट इज केप्ट फॉर द लास्ट, आइसिंग ऑन द केक। तो हमारे बीच में हम सबके बहुत प्रिय आने वाले हैं हिज ग्रेस वेणु माधव प्रभु। वेणु माधव प्रभु का इंट्रोडक्शन सब जानते हैं, कुछ लोग नए हैं और वो इनके नए रूप को शायद इतना नहीं जानते होंगे। और नए हैं प्रभु आप इंट्रोडक्शन, प्लीज से समथिंग द नाइन से, प्लीज प्लीज जल्दी, आई विल से समथिंग इन द लास्ट, जो आप में से कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा।
मैं जस्टिस तो नहीं कर पाऊंगा प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन को, स्टिल आप में से कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं यूट्यूब पर प्रोजेक्ट को, आपको जान के खुशी होगी प्रोजेक्ट का अपना यूट्यूब चैनल है और उसके 1,000,010,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एंड आई थिंक पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा किसी चैनल कॉरपोरेट ट्रेनिंग के जो सब्सक्रिप्शन है चैनल पे पूरे वर्ल्ड में, इट्स नॉट फ्रॉम अमेरिका, इट्स नॉट फ्रॉम रशिया, जापान, वो इंडिया के हैं, एक इंडियन के हैं। और कौन से इंडियन के हैं, वेणु माधव प्रभु के हैं। इट्स वेरी फेमस बाय हिज लीगल नेम मिस्टर विवेक बिंद्रा, इनके बहुत इंस्पिरेशनल मोटिव्स भी आते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस भी सर्कुलेट होते हैं। एंड अभी करंटली प्रभु जी बताते हैं आप जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप यहाँ से बाहर जाएंगे किसी भी गाड़ी में बैठते हैं, कोई भी ऑटो पकड़ते हैं, उसका डेली आइटम्स के आप कुछ भी आप लगा लीजिए, उसके जो ओनर्स हैं वो प्रभु जी के क्लाइंट हैं। प्रभु जी उनकी कंपनीज में जाके ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके एम्प्लॉयज को। एंड ही हैज रिटन मोर देन 10 बुक्स प्रभु जी ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन, एंड मैं खुद के सबके नाम भी नहीं पता, मोर देन 10 बुक्स प्रभु जी हैज रिटन बाय द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन हाउसेज। और उसके बाद प्रभु जी हैज received more than 100 awards all over the world, and he was recently awarded as best corporate trainer award in the whole Asia. बहुत आम बात है तो हम सबको मिलते ही रहते हैं अवार्ड है ना सो
या और इन्होंने एक मीट किया था जिसमें एक साथ इतने एचआरडी हेड्स आए थे मोर देन 800 एचआरडी हेड्स ऑफ ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज अंडर वन रूफ इन हिज प्रोग्राम
सो दैट वाज अ गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट वेंट इनटू द गिनीस
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड Actually, we are not so qualified. हमें तो उतनी details पता नहीं है तो he must be thinking आधी बात बता रहे हैं आधी बात नहीं बता रहे हैं लेकिन कि जो मुख्य आप योग्यता है इतने सारे अचीवमेंट्स के साथ साथ प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त हैं और इतने बिजी रहने के बाद यहाँ पे बहुत सुबह सुबह 16 माला का जप करते हैं और सारी शक्ति इनको गुरु की कृपा से प्राप्त हो रही है और इसके बाद he was the main instrument जो इस पंजाबी बाग यात्रा में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके हम वर्णन नहीं कर सकते वो आप में से कुछ लोग बाद में जोड़े लेकिन हम जानते हैं कि सन 2004 से लेकर 2008 तक प्रभु जी यहीं पे थे आश्रम में और पूरे आश्रम कितनी ऊंचाइयों तक ले गए और भगवद गीता का वितरण जब पहले 2004 में 2500 गीता होता था पंजाबी बाग से ये उसको 2.5 लाख तक ले गए लाख में नहीं चार सालों के अंदर ही 3 लाख तक ले गए थे 2008 में सो इट्स वेरी वेरी फेयरी प्रीचर और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं मतलब कि ऐसा कहते हैं कि पत्थर में भी जान डाल देंगे ना ऐसे व्यक्ति हैं तो बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने इनसे कि गीता जयंती का उत्सव था मेरी इच्छा ये थी कि पूरे 2 घंटे यही हमें सेमिनार दें गीता क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में भगवद गीता को भी ट्रेनिंग देते हैं बट इज सो हम्बल इसे नहीं कि मैं 2 घंटे नहीं बोलूंगा मैं खाली 20 मिनट बोलूंगा सो आई रिक्वेस्टेड इन सो सम अदर टाइम यू मे गिव द फुल टाइम सो प्लीज मेनु माधव प्रभु